इज़ालतुन नजासा, निजासत दूर करने के मसाइल। निजासत किसको कहते हैं? ये लफ्ज़ नजस से है और नजस का मतलब होता है कि वो चीज़ जो नापाक हो। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू और खाने के लिए दायां हाथ इस्तेमाल करते, अस्तंजा और दूसरी नजासत दूर करने के लिए बायां हाथ इस्तेमाल करते। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया। इससे अल्लाह ताला की तख्लीक पे प्यार आता है। बनाया तो दायां भी उसी ने है और बायां भी उसी ने है, लेकिन जिसने बनाया उसी ने कहा कि इसको इधर इस्तेमाल करो और उसको उधर। बस लोग एतराज़ करते हैं, वो कहते हैं क्यों, बनाया तो अल्लाह ताला ने भी बायां हाथ खुद ही है। तो इसकी दुनिया में कई मिसालें मौजूद हैं। आप जहाज़ में जाते हैं, जब तक आप उनके कहने पर सीट बेल्ट बांध नहीं लेते तब तक वो आपको नहीं छोड़ते। तो आप में से कभी किसी ने एतराज़ किया? कभी किसी ने कहा कि ऐसा क्यों कहते हैं? तो लिहाजा अल्लाह को पता है कि इसमें क्या है। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त के साथ साइंस से वो सारी चीज़ें प्रूव होती जा रही हैं कि जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए उसकी सारी हिकमतें मालूम हो रही हैं। उसको जान के अब लोग करें तो और बात है, हालांकि इसमें पूरी एक हिस्ट्री है, इस वक्त टॉपिक नहीं है। कहीं और इंशाल्लाह अगर इस मौजू पे हम बात करेंगे तो आपको पता है कि लेफ़्ट साइड जो होती है ना, हमारा दिल उसमें है, उस साइड में जो पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, यानी यूट्रस होता है वो उस साइड पे, किडनीज भी दोनों होते हैं, स्टमक लेफ़्ट साइड पे होता है। यानी हमारा पूरी लेफ़्ट साइड जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी उसके अंदर काम हो रहा है। अब अल्लाह ताला ने हमें राइट हैंड इस्तेमाल करने को क्यों कहा? ताकि हमारे अंदर के इस निज़ाम पे कोई ज़्यादा बोझ ना पड़े। पहले ही वो साइड बहुत जल है। अब अगर उधर से आप काम भी दूसरे कर रहे हैं तो नतीजा क्या होगा कि वो चीज़ ज़्यादा जाएगी। ऐसे ही जैसे आप एक तरफ ज़्यादा वज़न डाल दें और दूसरी तरफ कम डालें। तो अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, हमने हिकमत नहीं मालूम करनी, हमने हुक्म को सुन के मानना है। शीरख्वार बच्चा कपड़े पर पेशाब कर दे तो इस पर पानी छिड़क देना काफ़ी है, लेकिन शीरख्वार बच्ची के पेशाब को धोना ज़रूरी है। शीरख्वार कहते हैं दूध पीता बच्चा, यानी जो बच्चा सिर्फ दूध पे जिए। वैसे तो सारे दूध पीते हैं, अब आपके हम भी शीरख्वार हैं, तो शीरख्वार का मतलब क्या है कि जो सिर्फ दूध पे गुजारा करें। हज़रत अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शीरख्वार बच्चे के पेशाब पर पानी छिड़क दिया जाए और शीरख्वार बच्ची के पेशाब को धोया जाए। हज़रत क़तादा रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये हुक्म उस वक्त तक है जब तक के बच्चे गल्ला ना खाएं, यानी सॉलिड फूड। जब खाने लगें तो दोनों के पेशाब धोए जाएंगे। इसे अहमद और तिरमिज़ी ने रिवायत किया है। तो शीरख्वार तो हम समझ गए, यानी लड़के और लड़की के मामले में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें पहली बात देखिए कि अल्लाह का हुक्म है, क्यों ऐसा किया जाए? पहले हुक्म समझ लें फिर हिकमत समझ सकते हैं। यानी बाज़ दफ़ा वो बच्चे जो सिर्फ दूध पे गुजारा कर रहे हैं अभी, और ऑफकोर्स 3 से 4 माह की एज ही होती है क्योंकि उसके बाद मोस्टली बच्चे कुछ ना कुछ सॉलिड लेने लगते हैं। तो जब कोई बच्चा सिर्फ दूध पिए तो लड़का अगर कहीं पेशाब कर दे तो अब उस जगह को कैसे पाक किया जाए? आपने कहा कि सिर्फ पानी लेके छिड़क दिया जाए, जैसे स्प्रिंकल करते हैं ना इस तरह से हल्का सा। लेकिन कोई लड़की का अगर पेशाब हो तो उस जगह को पूरा वहाँ से धोया जाएगा। अब यहीं से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि देखा, ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और औरत को तो हकूक ही नहीं मिले। पहले बताएं इसमें हक की क्या बात है? एक बच्ची के पेशाब को धो रहे हैं, इससे बच्ची को हक कौन सा मिल रहा है? हिकमत समझनी चाहिए, अल्लाह का हुक्म है पहली बात। लेकिन अल्लाह का हुक्म किसी हिकमत के बगैर नहीं है। इसकी कुछ वजूहात है। पहली बात यह कि लड़के का पेशाब थिन होता है, हल्का होता है, पतला होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती। और लड़की का जो पेशाब होता है वो गाढ़ा होता है। इसको मैं हल्का सा मिलाने के लिए आपको जिक्र कर दूं कि औरतों को बड़े होने के बाद पीरियड्स होते हैं, मर्दों को नहीं होते। मर्दों के जिस्म के जो फासिद मादे होते हैं ना, वो उन्हीं के जिस्म को मजबूत करने में, उनको तवानाई देने में इस्तेमाल होते हैं। ये आज साइंस आपको बता देगी। लेकिन लड़कियों का जिस्म अल्लाह ताला ने नाजुक रखना होता है, नज़ाकत है। तो हम औरतों के जिस्म की ज़्यादा गंदगी बाहर निकलती है मर्दों की गंदगी से। ये एक छोटा सा मसला है। दूसरी बात आप देखिए कि बाज़ दफ़ा, यानी इस तरह भी हो सकता है कि जब लड़का पेशाब करता है उसका पेशाब जो है वो फैलने का डर होता है, जबकि लड़कियों का पेशाब जो वो एक ही जगह जमा होता है, और जब एक जगह होगा तो मतलब उसकी शिद्दत बढ़ जाती है जबकि किसी चीज़ के बिखरने से। और फिर वैसे भी आप देखिए, इस तरह तो एक जगह पे हो तो उसको साफ़ करना आसान हो सकता है, कोई कारपेट है या कोई दूसरी चीज़ है, लेकिन जो बहुत जगह हो तो उसमें शक भी रह सकता है। तो अल्लाह ताला ने शक से पाक किया। लेकिन जूँ ही बच्चा कुछ खाने लगे, अब दूध के अलावा कुछ और पी रहे, और मोस्ट लाइकली इस मसले का इत्तलाक जो है ना उन बच्चों पे होता है जो माँ का दूध पीते हैं। दूसरा, दूध जो बच्चा पीता है उसके पेशाब में और माँ का दूध पीने वाले में भी फ़र्क है। तो ये एक हुक्म जो हमें इस हदीस से समझ आया। हज़रत उम्मे कैस बिनते मखसन रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि वो अपना बेटा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर हाजिर हुई, जो अभी तक इनाज नहीं खाता था। इसे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में बिठाया तो इसने पेशाब कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर पानी छिड़कने के अलावा कुछ नहीं किया, यानी इसे धोया नहीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। एक तो वही मजमून है जो पीछे गुजरा, दूसरी इस हदीस से जो बात हमें मिलती है वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को गोद में लेते थे। क्या आज हमारे यहाँ किसी दीन का ये तसव्वुर मिलता है? इल्ला माशाल्लाह, यानी एकदम ऐसे लगता है कि मौलवी साहब या शेख साहब या आलिम है तो वो एक बिल्कुल मस्नूई खौल में रहे, बहुत नपे तुले पाकीज़गी का एक मजहर। हर चीज़ का एक वक्त तो होता है। अब ये नहीं कि आप उस्ताद को बच्चा पकड़ा के कहें कि हम ज़रा कुछ खाने चले जाएं या हम पढ़ने लग गए। मिसाल दे रही हूँ, तो अल्लाह के नबी वसल्लम शफकत से बच्चे को बिठाते थे। दूसरी बात, ज़रा सोचें, आप अपने ऊपर इमेजिन करें, आपने अपनी दोस्त के बच्चे को बड़ी मोहब्बत से पकड़ा। सिर्फ दोस्त की बात कर रही हूँ, दूसरे को तो खैर हम छोड़ ही दें और वो बच्चा आपकी गोद में पेशाब कर दे, हम क्या करेंगे? आज के बाद इसको नहीं पकड़ूंगी। हाँ नहीं, आपने कितने भी हार से किया कि उसके ऊपर हल्का सा पानी छिड़क दिया। तो ये पता चलता है कि असल दीन क्या होता है। दीन को लोगों से कट के या अलग एक नया रूप अख्तियार करने का नाम नहीं, दीन वही है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। कपड़े पर मनी या कोई दूसरी रतूबत लग जाए तो इतनी जगह पानी से धोकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए, ख्वा निशान बाकी रहे। मनी कहते हैं सीमन को, मादा यानी जिस्म से निकलने वाला मादा जो मर्द के जिस्म से निकलता है, और रतूबत कहते हैं वेट डिस्चार्ज को। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से जुनाबत धो देती, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते, पानी की नमी कपड़ों पर बाकी होती। इसे बुखारी ने रिवायत किया। दूसरी हदीस भी साथ ही लेते हैं। हज़रत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े से मनी धो डालती, लेकिन मनी का निशान या निशानात कपड़े पर बाकी रहते। इसे बुखारी ने रिवायत किया। तो इसे कुछ बातें मालूम होती हैं। पहली बात तो यह है कि उस दौर में कपड़े कितने कम होते थे। आज तो अब देखिए कि हमारे पास हर तरह के इंतज़ाम मौजूद होते हैं, हर मौसम के कपड़े, रात के कपड़े, दिन के कपड़े, सोने के जागने के कपड़े। उस दौर में ऐसा नहीं होता था, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह का मामला होता। फिर दूसरी बात पता चलती है कि सिर्फ ये उज़र बना के घर बैठ जाएं कि मेरे कपड़े ठीक नहीं या मुझे शर्म आती है, कोई क्या पूछेगा कि इसके कपड़े गीले हैं, तो इस वजह से नमाज नहीं तरक की जाएगी। हकायक होते हैं इसके साथ इंसान को बिल्कुल वैसे ही मामला करना चाहिए जैसे दूसरी चीज़ों के साथ करते हैं। इसी से फिर आप देखिए कि एक साइड इशू निकलता है जो कि इस वक्त इस हदीस से डायरेक्ट नहीं मिलता, लेकिन औरतों के मामले में भी बस दफ़ा हैज़ में या पीरियड्स में जो कपड़े पहने होते हैं उस पे कोई निशान लग जाता है, फिर उसको धो लिया जाए तो धुला हुआ हो और गीला ही हो अभी बेशक, तो उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है। और इंशाल्लाह अगला चैप्टर आ रहा है, उसमें डिटेल्स इसकी आ जाएंगी। और इसके बाद आप एक छोटा सा साइड इश्यू जो इसमें मिलता है कि एक औरत की कितनी फरमा बरदारी है कि वो अपने मर्द की खिदमत करती है। इससे भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत का पता चलता है। अहले किताब के बर्तन धोते वक्त या धोने के बाद कलमाए शहादत वगैरह पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं। आपने देखा वो लोगों को ऐसा करते हुए? असल में वो बर्तनों को पाक कर रहे होते हैं, मुसलमान कर रहे होते हैं बर्तनों को। हाँ, मजबूरी की हालत में अहले किताब के बर्तन पानी से धोकर इस्तेमाल करने जायज़ हैं। हदीस क्या है इन दोनों मसाइल के लिए? हज़रत अबू सलबा अल खुशनी रदी अल्लाह अनहुस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सफ़र करने वाले लोग हैं, यानी अक्सर सफ़र पर रहते हैं। हमारा गुजर यहूद नसारा और मजूसियों पर होता है और इनके बर्तनों के अलावा हमें कोई बर्तन मुयस्सर नहीं आता, इस बारे में क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अहले किताब के बर्तनों के अलावा कोई बर्तन ना मिले तो इनको पानी से धो लो और इनमें खाओ पियो। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। तो इससे जो बात समझ में आई वो बहुत वाज़े है कि अगर किसी वक्त इंसान को अहले किताब के किसी बर्तन में खाना पड़ता है और बर्तन पे ज़ाहरी तौर पे कोई गंदगी नहीं है तो खा सकते हैं। कलमा पढ़ना और उसको पाक करना इस नियत से इस तरह की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर उस बर्तन पे कोई गंदगी लगी है या आपको शक पड़ता है कोई नजस चीज़ उसमें है, तो फिर ना इस्तेमाल करें जबकि वो लगी हुई है। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखें तो अमूमन कोई होटल्स हैं या आप रेस्टोरेंट्स में से गुजरते हैं या कोई और ऐसी जगह जहाँ नॉन मुस्लिम पकाते हैं खिलाते हैं, तो मोस्टली बर्तन है वो डिश वॉशर्स में धुलते हैं जो कई बार पानी डलता है उसमें और डिटर्जेंट्स, और इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे धोते हैं कि उसमें जर्म्स भी किल हो जाते हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। हाँ, कोई अगर ज़ाहरी चीज़ है मसलन जैसे शी, तो उस वक़्त लोगों ने वो बर्तन भी फेंक दिए जिसमें शराब तैयार की जाती थी, क्योंकि बाज़ चीज़ें मखसूस हैं। इस पर इंशाल्लाह बात आगे हो सकती है। इस वक्त क्योंकि ये सिर्फ नजस की बात है ना, तो नजासत के चैप्टर में, लेकिन सिर्फ अगर यही एक टॉपिक हो कि अहले किताब के बर्तनों में, तो उसमें फिर थोड़ी मज़ीद तफसीलात होती हैं। मसला ये कि कुछ बर्तन हैं वो इस्तेमाल ही एक ख़ास चीज़ के लिए होते हैं जो हराम है। मसलन कुछ जाम है, शराब उसमें पी जाती है, कोई ऐसे ख़ास बर्तन है जिसको देखते एकदम वही बर्तन लगता है, तो ऑफ कोर्स उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जितना ईमान और तकवा बढ़ता जाएगा आप इसको फील करेंगे। हमारे यहाँ आप देखिए कि कितना मरूफ रिवाज है पाकिस्तान में भी और अपने मुस्लिम में, वो ग्लास जिसके नीचे एक स्टैंड होता है और हैंडल वाला या कुछ है, और बड़े फ़ख्र से इस्तेमाल करते हैं। बल्कि पब्स जो होते हैं जहाँ शराब पी जाती है, तो एक ऐसा काउंटर सा बना होता है, काउंटर के ऊपर छत के ऊपर उल्टे लटके होते हैं, वो एक स्टाइल है शराब खानों में ऐसा होता है। तो मैंने मुसलमानों के घरों में इस तरह उनका जो डाइनिंग रूम है उसके ऊपर बना हुआ भी देखा, बिल्कुल वैसे ही लटके होते हैं। तो असल पता क्या है कि हमें पता जो नहीं होता, तो देखा देखी अब किसी कैटलॉग से डिज़ाइन ले के अगर अलमारी बनवाई तो उसमें ये बन गए, लेकिन जिसको पता होगा फिर वो ऐसा काम तो नहीं करेगा।